समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार श्रोताओं, परिक्रमा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम में होंगे देश दुनिया के समाचार और हम लेकर के आए हैं आपके लिए काफी रोचक जानकारी। तो आगाज करते हैं परिक्रमा कार्यक्रम का और आज के इस अंक में मैं हूं निखिल कुमार और मेरे साथ में है मेरे सहयोगी वीसी प्रमोद। प्रमोद, आपको भी मेरा नमस्कार।
आपको भी नमस्कार निखिल, और हमारे सारे श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार।
और प्रमोद, सबसे पहले आज हम जिक्र करते हैं राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का, जो कि हमारे देश में 11 से 17 जनवरी तक मनाया जाता है। इस सप्ताह का उद्देश्य लोगों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना, दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सुरक्षित यातायात व्यवहार को प्रोत्साहित करना और यातायात के नियमों का पालन करना। खासतौर पर हम देखते हैं कि लोग हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग करने से बचते हैं, क्यों प्रमोद?
बिल्कुल सही बोला आपने, जो कि बहुत गलत है।
जी हाँ, और तेज गति से भी बचना चाहिए और नशे की हालत में वाहन ना चलाएं। पैदल यात्रियों की सुरक्षा पर विशेष तौर पर ध्यान दें और जो अभियान चलाए जाते हैं उनसे जागरूकता भी प्राप्त करते रहें। साथ ही यदि आपके आसपास यातायात से संबंधित कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है तो उससे भी जरूर आप अटेंड कर सकते हैं। तो श्रोताओं, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह नागरिकों को जिम्मेदार सड़क उपयोगकर्ता बनाने और सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली जान माल की हानि को रोकने का संदेश देता है। और खास बात यहां पर नोटिस करने वाली प्रमोद ये है कि जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं उनमें से एक स्टडी ये कहती है कि 90% एक्सीडेंट सामने वाले की गलती से होते हैं।
जी बिल्कुल, बट क्या करें, हमें तो सतर्क करके चलना पड़ेगा।
जी हाँ,
क्या सो एज लिसनर्स, निखिल राइटली सेड, वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, आवर डिस्कशन सेगमेंट, डेटलाइन इंडिया, रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर, ऑल दीज ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स, बट वी बिगिन विद द न्यूज हेडलाइंस फर्स्ट।
बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है सरकार बिना किसी भेदभाव के जन कल्याण की भावना से काम कर रही है। श्री मोदी ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल देशों की संसद के अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन को संबोधित किया।
That's right. Display of Indian Army's cutting edge capabilities, modern combat readiness and indigenous missile systems marked the 78th Army Day parade in Jaipur. Defense Minister Rajnath Singh reiterates commitment to building a modern, Atmanirbhar and future ready army.
तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों को विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए ईरान छोड़ने की सलाह दी है।
एलॉन मस्क्स एआई मॉडल ग्रॉक नॉट टू अलाउ एडिटिंग ऑफ इमेजेस ऑफ रियल पीपल इनटू रिवीलिंग क्लोथिंग अमिड कंसर्न्स ओवर एआई डीप फेक्स।
और महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में मुंबई इंडियंस आज शाम नवी मुंबई में यूपी वॉरियर्स के साथ खेलेगा।
And now it's time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national and the global level. Today we'll talk about Army Day and Thai Pongal. Today India observes Army Day, a day that stands as a tribute to courage, discipline, sacrifice and unwavering service. It is a day when the nation pauses to honor the brave men and women of the Indian Army, who dedicate their lives to safeguarding our borders and protecting our people. On this solemn and proud occasion, Prime Minister Narendra Modi extended his heartfelt greetings and best wishes to the Indian Army. He described the force as a symbol of selfless service, highlighting how soldiers remain steadfast in their duty, often under the most difficult and dangerous conditions.
सेना दिवस का ऐतिहासिक महत्व बहुत अधिक है। ये उस दिन की याद दिलाता है जब जनरल के एम करियप्पा ने भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला था, जो भारत के स्वतंत्रोत्तर इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। ये परिवर्तन न केवल नेतृत्व में बदलाव का प्रतीक था बल्कि भारत की संप्रभुता और सैन्य पहचान को भी मजबूत करता था। भारतीय सेना विश्व की सबसे अनुशासित और पेशेवर सेनाओं में से एक है। इसके सैनिक पृथ्वी के कुछ सबसे कठिन वातावरण में सेवा करते हैं, बर्फीली पर्वत चोटियों, घने जंगलों, रेगिस्तानों और लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा करते रहते हैं। चरम मौसम, एकांत और निरंतर जोखिम के बीच भी भारतीय सैनिक सतर्क रहते हैं ताकि वे राष्ट्र में शांतिपूर्वक लोगों को रहने सकें।
That's right. But the role of the Indian Army goes far beyond the battlefield. Time and again, the Army has been at the forefront of disaster relief and humanitarian operations, rescuing civilians during floods, earthquakes, landslides and other emergencies. In fact, मुझे याद है निखिल, जब दो साल पहले बाढ़ आई थी केरला में, तो कुछ आर्मी ऑफिसर्स बिल्कुल लेट गए थे ताकि लोग उनके ऊपर से चढ़के जाएं ब्रिज की तरह, which is amazing.
बिल्कुल amazing है, वाकई।
In moments of crisis, the army becomes a lifeline, proving that service to the nation extends far beyond defense alone. Army Day is not merely a ceremonial occasion, it is a reminder of the values that define the Indian Army: honor, integrity, unity, and resilience. As citizens, Army Day invites us to reflect on the freedoms we enjoy every day. Freedoms made possible by the silent vigilance of soldiers standing guard, often far away from their families and loved ones. Today, as parades, ceremonies, and tributes take place across the country, the message is clear and powerful. The nation stands united with its army.
हम अपने सैनिकों की वीरता को सलाम करते हैं, सर्वोच्च बलिदान देने वालों की स्मृति का सम्मान करते हैं और भारतीय सेना के प्रत्येक सदस्य के प्रति हार्दिक कृतज्ञता भी व्यक्त करते हैं, जो अपने साहस और प्रतिबद्धता के साथ देश की सेवा करना जारी रखते हैं.
That's right, Nikhil. On this Army Day, let us remember that while we sleep peacefully, it is the soldier who stays awake, protecting the tricolor and upholding the dignity of the nation. Jai Hind.
Jai Hind.
Today we also celebrate Thai Pongal, the joyous festival of harvest, gratitude and new beginnings. Pongal marks the arrival of the Thai month in the Tamil calendar, a month that holds deep cultural, spiritual and social significance. In Tamil society, Thai is believed to usher in fresh opportunities and positive change. There is a beautiful Tamil proverb that says, Thai Pirandal Vaipirakum, when that Thai is born, new paths open. And that belief continues to guide Tamil life even today. This is why the Thai month is considered highly auspicious. It is a preferred time for weddings, starting new businesses, purchasing homes, and embarking on important ventures.
वाकई पोंगल का जो त्योहार है हमारी सभ्यता में, हमारी संस्कृति में ऐसे विचारों को लेकर के आता है जो हम सभी को एकजुट रहने, एक दूसरे का साथ देने, एक दूसरे के साथ त्योहार मनाने और एक दूसरे की भावनाओं को सम्मान देने का ही प्रतीक हमें दर्शाता है.
एक मजा भी आता है निखिल.
बिल्कुल. हाँ. एक भारतीय नागरिक होने के नाते हम ये समझ सकते हैं कि पोंगल का जो एक इनिशियल विचार रहा होगा वो इसलिए होगा कि हम अपने जीवन में अपने मौसम का, अपनी फसलों का और तमाम ऐसी घटनाओं का जो हमारे लिए मैटर करती हैं उनको एंजॉय कर सकें.
एंड एज किड्स मुझे याद है निखिल, जब हम छोटे थे तो जो पोंगल में खाना बनता है वो बहुत टेस्टी बनता है, तो हम उसके लिए वेट करते थे जब हम छोटे थे.
That's nice.
Yeah. At the heart of the celebration is a ceremonial preparation of pongal, the dish from which the festivity takes its name. Made using newly harvested rice, fresh milk and jaggery, pongal is cooked outdoors, often facing the rising sun. As the milk boils over the pot, families cheerfully exclaim, Pongalo Pongal, a joyful expression symbolizing abundance, prosperity and overflowing happiness.
जी हाँ, थाई पोंगल सिर्फ एक उत्सव का हम इसे सिर्फ उत्सव नहीं कह सकते हैं, बल्कि एक कृतज्ञता से भरा एक त्योहार है जो सूर्य देव को गर्मी और ऊर्जा के लिए, वर्षा को खेतों को सींचने के लिए, धरती को उसकी उदारता के लिए और उन किसानों को धन्यवाद देने का समय है जिनकी मेहनत से देश का पेट भरता है. यह मवेशियों का भी सम्मान करता है जो पारंपरिक कृषि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और हमें मनुष्य, पशु और प्रकृति के बीच में घनिष्ठ संबंध की याद भी दिलाते हैं.
That's right. Andhra Pradesh is celebrating Sankranti with great joy and fervor. More from our correspondent.
Andhra Pradesh is celebrating Sankranti with great joy and color. The three-day festival began previous day with Bhogi Bonfest early in the morning. Houses and streets are decorated with bright rangolis. Everyone is seen wearing new traditional clothes. Villages and towns look lively and cheerful. Rooster fights draw large crowds. Traditional games and folk dances entertain people of all ages. Special cultural events are held across the state. Temples are crowded with pilgrims offering prayers. Devotees seek blessings for a good harvest, good health and happiness. Sankranti brings families together and fills the state with tradition, devotion and festive spirit. Allu Murli, Akashvani News, Vijayawada.
In many ways, Thai Pongal is a celebration of sustainable living and respect for nature, values that feel especially important in today's fast-changing world. Beyond its rituals, Pongal is also about togetherness. Families gather, elders share stories and blessings, children laugh and play, and communities come together in unity. The festival strengthens bonds, revives traditions, and passes cultural values from one generation to the next.
वाकई प्रमोद, हम ये कह सकते हैं कि अपनी मातृभूमि से दूर रहने वाले तमिल लोगों के लिए थाई पोंगल पहचान और विरासत की एक सशक्त याद दिलाता है। वे दुनिया में कहीं भी हो, पोंगल की भावना उन्हें अपनी जड़ों से जोड़ती है और ये शुभ थाई सुबह सूर्योदय के साथ ही नवीनीकरण, कृतज्ञता और आशावाद का संदेश लेकर के आती है और जो भी हमारे पास है उसकी सराहना करने और आगे बढ़ने के लिए हमें उसकी याद दिलाता है।
Bring peace to your homes, success to your endeavors, and happiness that overflows just like the pongal pot itself. Iniya thai pongal nalvarikum. Happy thai pongal to you and your loved ones.
और श्रोताओं, अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से ये जानने का कि उनके पास आज के दिन क्या विशेष है।
That's right, Nikhil. Nikhil, आप वर्ल्ड बुक फेयर गए थे?
जी हाँ, बिल्कुल, दो बार जा चुका हूँ।
प्यार है। Wonderful. The World Book Fair 2026 being held at the Bharat Mandapam in New Delhi has turned into a paradise for children. Away from glowing screens, books teach children to pause, feel and dream. A report.
In an age dominated by online reading and endless scrolling, children of all ages can be seen thronging the fair, dragging trolleys and carrying bags ready to be filled with books. Talking to Akashwani, a student of 6th grade expressed his fondness for reading and for books.
I am Vihan Durgapal from Standard 6. So this big book fair and I really like it. The types of books, they're so diverse and usually whenever I get a book, I just finish it in 2 or 3 days and then I'm bored and then I ask for more books. But now the amount of diverse books, and there's not just one type, there's so many types, so you can just pick any book and start reading, and the books don't finish either, they just go on forever. So I really like this fest. And at home when I'm usually reading, so I get so engrossed I don't really keep track of time, so I just finish one book in 60 minutes, so after that I get bored and then I ask for more books, but now I've bought so many books I don't think that they're gonna finish.
Leonie, a bright 5th grader, shares with happiness that she has already bought more than 7 books.
Hello everyone, mera naam Leonie hai aur main 5th kaksha ki chhatri hu. Yahan par World Book Fair mein aakar mujhe bahut acha mehsoos hua. Yahan par main bahut time baad aayi hu. Yahan par mujhe bahut sari nayi nayi cheeze dekhne ko mili. Har dukaan par kuch alag dekhne ko milta hai aur yahan par bahut achhi achhi aur interesting kitabe bhi hain. Yahan par aake mujhe bahut acha mehsoos hua aur maine 7 se 8 kitabe khareedi.
Let's listen in to more children on their love for reading.
My name is Satviki Tiwari and I'm in class 8 and I study in Delhi Public School, Noida. I'm here in the book fair to buy books and I love books of mythology and culture and religion and fiction and all. And I've bought many books and I love books.
The World Book Fair will continue till the 18th of this month. Entry to the fair is free for all. With Sanyukta, this is Anuja Kumar for Parikrama.
और श्रोताओं, चलते हैं अब महाराष्ट्र, जहां पर लोकतंत्र का उत्सव यानी महानगर पालिका चुनाव के लिए मतदान जारी है, तो नागपुर से आइए सुनते हैं हमारे प्रतिनिधि की ये रिपोर्ट।
राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार महाराष्ट्र में नागपुर महानगर पालिका सहित 29 महानगर पालिकाओं के लिए सार्वत्रिक चुनाव 2026 के तहत आज सुबह 7:30 बजे से मतदान जारी है, जो शाम को 5:30 बजे तक चलेगा। नागपुर शहर में 24 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा के लिए मनपा द्वारा विशेष परिवहन व्यवस्था तथा व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की गयी है। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के साथ साथ आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। वहीं डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से मतदान केंद्र खोजने की सुविधा भी दी गई है। इस बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागरिकों से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की है।
हमारी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव हो रहा है, हमारे लोकतंत्र की एक ऐसी इकाई है जिसको हम लोकतंत्र की मूल गाथा, आधारशिला कह सकते हैं, इसलिए इसमें मतदान करना ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिनका भारत के लोकतंत्र पर विश्वास है, ऐसे सभी लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आप मतदान के लिए जाइए। मैं ऐसा मानता हूँ कि मतदान ये केवल आपका अधिकार नहीं है, तो ये आपका कर्तव्य भी है। लोकतंत्र में अगर हम अच्छा शासन चाहते हैं, तो हम मतदान के लिए जाएं। इसलिए मैंने भी मतदान किया है, मैं सभी को अपील करता हूँ, आप भी मतदान कीजिए।
इसके अलावा नागपुर महानगर पालिका चुनाव प्रक्रिया के तहत शहर के प्रत्येक जोन में एक मतदान केंद्र ऐसा है जहाँ पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित की जा रही है, जिन्हें पिंक बूथ कहा जा रहा है। साथ ही प्रत्येक जोन में एक आदर्श बूथ भी स्थापित किया गया है, जहां मतदाताओं के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी नागपुर से धनंजय वानखेड़े के साथ मैं हिमांगी कुलकर्णी।
Manipur is a land that has given birth to countless brave heroes whose courage and sacrifices are deeply woven into its history. Among these towering figures stands Maharaja Gambhir Singh, a visionary leader and fearless warrior who played a decisive role in safeguarding the sovereignty and identity of Manipur. More from our Imphal correspondent.
In Manipur, the 92nd death anniversary of Maharaja Gambhir Singh was observed across the state by different groups on last Friday. The state-level observation was held at the Samadhi of the Maharaja at Langthawan, in which people were led by the governor of Manipur, Ajay Kumar Bhalla, in floral tribute to the statue of Maharaja Gambhir Singh, Maidingu Narasingh and Sana Hirachandra. A guard of honor, gun salute and sounding of the last post were accorded by a contingent of Manipur Rifles as part of the observation. Addressing the observance, Governor Ajay Kumar Bhalla said that Manipur's history, while marked by glory, also endured profound suffering during the Burmese occupation of 1819 to 1826, remembered as 7-year devastation or Chahitaret Khuntakpa. The governor said that Maharaja Gambhir Singh's legacy extended beyond military victory to visionary statesmanship, culminating in international recognition of Manipur's sovereignty through the Treaty of Yandabo. He added that the state government is honoring this enduring legacy by protecting the Maharaja Samadhi as a historical monument and by developing Langthawan Konungching as a center of heritage, learning and tourism. He said,
Maharaj Gambhir Singh was not merely a ruler of his time. He was a defining force in the destiny of Manipur. Rising from the ashes of devastation, he embodied resilience, courage and strategic vision and assumed the historic responsibility of restoring Manipur's freedom and dignity. His role in the First Anglo-Burmese War and the subsequent Treaty of Yandabo in 1826 was of lasting significance. The government of Manipur has taken meaningful steps to honor his enduring legacy.
The death anniversary of Maharaja Gambhir Singh is a powerful reminder of Manipur's proud history and the sacrifice made to protect its freedom and identity. JJ Thokchom, Akashvani News Parikrama, Imphal.
श्रोताओं, उज्जैन की धरती एक बार फिर से शिवमय हो उठी है। यहाँ श्री महाकाल महोत्सव में आस्था, संगीत और संस्कृति एक साथ साकार हो रहे हैं। शिव भक्ति में डूबी शाम और फिर एक बार शिव तत्व की भव्य अनुभूति यहाँ पर देखी जा रही है। आइए सुनते हैं हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग भगवान श्री महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन में 5 दिवसीय महाकाल महोत्सव की शुरुआत हो गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल इस महोत्सव का विधिवत शुभारंभ किया। यह महोत्सव वीर भारत न्यास, विक्रमादित्य शोध पीठ और श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। महोत्सव के पहले दिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि श्री महाकाल महोत्सव श्रद्धालुओं को अध्यात्म, धर्म और प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा से जोड़ने का कार्य करेगा।
धार्मिक पर्यटन के आधार पर उज्जैन और प्रदेश की पहचान बन रही, अलग अलग प्रकार के हमारे सभी क्षेत्रों के माध्यम से लोगों को रोजगार भी मिले, जानकारी भी मिले, उज्जैन से उनका संबंध भी जुड़े, मध्य प्रदेश से संबंध जुड़े। इसलिए अभी तक हमारा श्रावण महोत्सव होता था, लेकिन अब हमने कहा कि बाबा महाकाल के महालोक के बनने के बाद जब बड़ी संख्या में हमारे श्रद्धालु आते हैं, तो इनके लिए और नए नए प्रकार के इस प्रकार के कार्यक्रम का संयोजन किया जाए।
पहले दिन प्रसिद्ध गायक शंकर महादेवन ने शिव होम की प्रस्तुति दी, जिसने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं आज यानी महोत्सव के दूसरे दिन शिव तत्व पर आधारित प्रस्तुति शिवा का आयोजन किया जाएगा। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी भोपाल से मैं अभिनव गोयल।
इन केरला मगरमास पूजा began at the Shabrimala Hill Shrine. This follows the Magara Vilakku festival, which was observed yesterday with traditional rituals. More from our Trivandrum correspondent.
Even though Masa Puja is a monthly ritual, it holds greater significance as Magara Masa Puja immediately follows the Magara Vilakku festival at Shabrimala. The hill shrine will remain open to pilgrims until 19th of this month. On 20th, only the Raja's representative will be permitted to offer worship and the temple will remain closed to pilgrims, marking the end of this year's Shabrimala pilgrimage season. Smithy M. Palluruthi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
Anandeshwari और भी सिर्फ चलते हम खेल के मैदान में, जानते हैं वहां की हलचल। तो भाई महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में आज मुंबई इंडियंस का मुकाबला यूपी वॉरियर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से नवी मुंबई में खेला जाएगा। अंक तालिका की हम बात करें तो मुंबई इंडियंस दूसरे स्थान पर है, वहीं यूपी वॉरियर्स इस पायदान में अंतिम पायदान पर हमें नजर आती है। तो अगर वो इस मैच में हारती है तो प्ले ऑफ की दौड़ से उनका बाहर होना लगभग तय हो जाएगा।
That's right. In some business news now, the Indian stock markets were closed today on account of municipal corporation elections in Maharashtra. Trading in equity, derivatives and currency segments also remained suspended. Meanwhile, in the global crude oil market, Brent crude was trading over 4.2% down at $63.70 per barrel, and WTI crude was also trading over 4.3% down at $59.39 per barrel in intraday trade. For more updates about the market activities, tune into Akashwani's bilingual program Market Mantra at 6:30 p.m. this evening.
श्रोताओं, अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे कुछ ऐसे व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या फिर जन्मदिन।
Saifuddin Kichlu,
alongside fellow freedom fighter Satyapal, led a strike to agitate people against British oppression. In a public gathering in Amritsar on 30th March 1919, addressing a gathering of 30,000 people, he said,
"The message of Mahatma Gandhi has been read to you. All citizens should be prepared for resistance. This does not mean that this sacred town or country should be flooded with blood. The resistance should be a passive one. Do not use harsh words in respect of any policeman or traitor which might cause him pain or lead to the possibility of a breach of peace."
The British were alarmed by the growing resistance against the Rowlatt Act and they arrested Kichlu and Satyapal on the 10th April and sent them to Dharamshala. Their arrests triggered the mass gathering at Jallianwala Bagh, which was violently crushed by General Dyer, massacring hundreds of innocent people on 13th April 1919. In December 1919.
Kichlu was instrumental in the establishment of Swaraj Ashram in January 1921 at Amritsar to train young men for national work and to promote Hindu-Muslim unity. Saifuddin Kichlu was repeatedly arrested by the British authorities and spent a total of 14 years in jail.
Kichlu was also the chairman of the reception committee of the Congress session in Lahore when on 26 January 1930 the Indian National Congress declared Indian independence. Kichlu was supporter of Bhagat Singh and was actively involved with him in Naujawan Bharat Sabha. He was also a member of the Foundation Committee of Jamia Millia Islamia.
In 1947, Kichlu strongly opposed the acceptance of the partition of India. He spoke out against it at public meetings across the country. He called it a blatant surrender of nationalism for communalism. He was the founder president of the All India Peace Council, besides remaining vice president of the World Peace Council.
He received the Stalin Peace Prize in 1952. In 1951, the Government of India made Kichlu, along with Jawaharlal Nehru and Maulana Abul Kalam Azad, life trustees of the Jallianwala Bagh National Memorial Trust. He died on 9th October 1963. We salute the great nationalist.
We also remember social reformer Ram Gopal Ghosh, who died on 15th January 1868. One of the leaders of the Young Bengal group, he was referred to as Indian Demosthenes, comparing him to the Greek statesman of ancient Athens. Ghosh also helped in the establishment of Bethune College in 1879, which was the first women's college in India as well as in Asia.
Ram Gopal Ghosh joined the class of radical thinker Henry D'Orazio and soon became friendly with Ramtanu Lahiri and the other D'Orazians. When D'Orazio established the Academic Association, Ghosh became one of its leading members. In 1853, he was among the first to demand the eligibility of Indians in the civil service examinations.
In 1854, he proposed the establishment of universities in India. Ram Gopal Ghosh took an active part in the establishment of the British Indian Association. We salute the great Indian.
और श्रोताओं आपको बता दें कि आज पुण्यतिथि है तपन सिन्हा की। वे बांग्ला और हिंदी सिनेमा के एक प्रतिष्ठित फिल्म निर्देशक और निर्माता थे जिन्हें यथार्थवादी तथा सामाजिक सरोकारों से जुड़ी फिल्मों के लिए जाना जाता है। उन्हें 2006 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया और उनकी फिल्मों को भारत के अलावा बर्लिन, वेनिस, लंदन, मॉस्को जैसे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में काफी उन्हें सराहा गया था। और आपको बता दें कि उनके करियर में जब उन्होंने अपनी फिल्मों का निर्माण किया तो समाज की जटिलताओं, मानवीय संवेदनाओं और नैतिक मूल्यों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया था।
That's right, and तपन सिन्हा की एक बहुत फेमस फिल्म है निखिल, काबुलीवाला।
जी,
उसका एक गाना सुन ले।
बिल्कुल।
तुझको बिल्कुल दुबार, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान।
और श्रोताओं आपको बता दें कि तपन सिन्हा को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए वैसे तो कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले थे, लेकिन पहला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी तपन सिन्हा को दिया गया था।
That's right. Today is also the death anniversary of Homai Vyarawala, the famous photojournalist. In fact, she was known by her pseudonym Dalda 13. उनका जो एक निकनेम था निखिल, वो डालडा 13 था। She was India's first woman photojournalist and she began her career in 1938 working for the Bombay Chronicle, capturing images of daily life in the city. Vyarawala worked for the British Information Services from the 1940s until the 1970s. और एक इंटरेस्टिंग बात ये है, when she was taking a picture of महात्मा गांधी, तो उन्होंने वो फ्लैश उनकी आंखों में दबाया, तो उन्होंने बड़े गुस्से से बोला कि लड़की तो मेरे को अंधा करके छोड़ेगी।
और श्रोताओं, फोटो पत्रकारिता में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। आज ही पुण्यतिथि है नामदेव ढसाल की। वे मराठी साहित्य के प्रखर कवि थे जिन्हें दलित साहित्य आंदोलन के प्रमुख स्तंभों में से गिना जाता है। और आपको बता दें कि नामदेव ढसाल की कविताएं सामाजिक अन्याय, जातिगत भेदभाव और शोषण के विरुद्ध तीखी आवाज के रूप में जानी जाती हैं। और आज ही हम याद कर रहे हैं ज्ञानी गुरमुख सिंह मुसाफिर को, जिनकी आज जयंती है। वे पंजाबी भाषा के जाने माने साहित्यकार थे और उनके कहानी संग्रह उर्वर पार के लिए उन्हें मरणोपरांत 1978 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और उन्हें पद्म विभूषण से भी विभूषित किया गया था।
And shall we move on to birth anniversaries, Nikhil?
Bilkul, bilkul.
Theek hai. So today is also the birth anniversary of Sajjan. He was born on this day in 1921. He was a Bollywood and stage actor. He acted in several plays and movies from the 1950s to the 1980s. His best known films are Bees Saal Baad, Chalti Ka Naam Gaadi, April Fool, Rail Ka Dibba, Johnny Mera Naam and Jhumru. Well, the important thing is that he had desired to become a lawyer and not an actor. But ye ulta ho gaya, unke papa ne bola ki ab actor bano, lawyer mat bano. A poet by heart, Sajjan showed his talent when he wrote dialogues for Meena and lyrics for Dur Chale and Dhanyavad. He also acted in small roles in Prithvi Theatre. And I think Nikhil, aapne Vikram Betal zarur dekhi hogi bachpan mein, TV serial.
Bahut bahut pasandeeda serial raha hai ye. To aaiye sunte hain uska ek dialogue.
Ji.
Are maan gaya veer Vikramaditch. वाह, तुम्हें शक्ति है, साहस है। अरे मैं तो बेताल हूं, तू चाहे तो अपनी शक्ति से इंद्र को भी परास्त कर सकता है। अरे वाह वाह, मान गया, वीर है वाकई। अरे मैं तो तेरी प्रतीक्षा कर रहा था।
और श्रोताओं आपको बता दें कि आज जन्मदिन है हर प्रसाद दास का। वे उड़िया भाषा के प्रसिद्ध निबंधकार, कवि और स्तंभकार हैं। वर्ष 2012 में उन्हें उनकी रचना वंशा के लिए मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और उनके द्वारा रचित कविता संग्रह गर्भगृह के लिए वर्ष 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और आज ही जन्मदिन है भानुप्रिया का। भानुप्रिया भारतीय सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री, कुशल नृत्यांगना, भरतनाट्यम कलाकार थी और हैं। और आपको बता दें कि उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1980 के दशक में की थी। तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी सिनेमा में सशक्त भूमिकाएं निभाकर उन्होंने व्यापक पहचान बनाई थी। और आज ही हम याद कर रहे हैं नील नितिन मुकेश को, जिनका की आज जन्मदिन है। भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2005 में जॉनी गद्दार से की थी और उसके बाद कई सारी फिल्मों में वो नजर आए जिनमें उनकी भूमिकाएं काफी पसंद की गई। और श्रोताओं, फिलहाल वक्त हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए निखिल और वीसी प्रमोद को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर संपन्न करने की।
That's right. And stay tuned for our 5 o'clock and 5:05 bulletin.
Bilkul.
Namaskar.
Namaskar.